السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی کیسے آپ سب لوگ؟ الحمد للہ. جی میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ. اوکے آج ہم انشاءاللہ مین ساکن سے سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ اوکے اب ہم آ جاتے ہیں میم ساکنہ کے احکامات کے اوپر. نون ساکن کے کمپیریزن میں میم ساکن کے احکامات کافی ایزی ہیں, اور میم ساکن بیسیکلی وہی میم ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکہ نہ ہو, یعنی فتحہ کسرہ اور غمہ آپ کو نہ نظر آ رہا ہو تو وہ میم ساکن ہوتا ہے. اور میم ساکن میں اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے, حرف میم آ جائے, تو پھر ہم وہاں پر ادغام کرتے ہیں. یعنی فرسٹ میم جو ہے وہ سیکنڈ میم کے اندر بالکل مرج ہو جاتا ہے, اور آپ اسے مکمل طور پر ادغام کے ساتھ پڑھتے, غنہ کے ساتھ پڑھتے. جیسے مین ہوبا تو ہوب اس میم ساکن کے بعد نیکسٹ میم متحرک آ رہا ہے, تو آپ اسے یعنی ادغام کر کے زیادہ دیر ٹھہر کے پھر پڑھتے مین ہوبا. ٹھیک ہے. اور ساکن کے بعد با آ جائے تو با کے آنے سے ہم میم ساکن کی آواز کو چھپا دیتے ہیں, اخفا شفوی کرتے ہیں. اوکے جو ادغام ہے بیسیکلی ادغام, اس کو ہم کہتے ہیں ادغام شفوی. چونکہ ہم لپس کے اندر ادغام کرتے ہیں اس کو ادغام شفوی بھی کہا جاتا ہے, اور اس کا ایک اور نام بھی ہے جو کہ ہم کہتے ہیں اسے ادغام مثلین صغیر. یعنی ادغام مثلین صغیر, مثلین کہتے ہیں سملر لیٹرز کو. میم ساکن کے بعد چونکہ میم کے اندر ادغام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ دونوں لیٹرز سملر ہیں ایک دوسرے کے, اور صغیر اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا یعنی اگر اس پوری ٹرم کو آپ دیکھیں تو ادغام تو مرجنگ ہو گیا, اور مثلین جو ہے وہ سملر لیٹرز کی وجہ سے, اور صغیر اس لیے چونکہ پہلا میم ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے. انشاءاللہ اس کو ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جب بک ٹو میں ہم انشاءاللہ ادغام کے چیپٹر کو پڑھیں گے تو اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. صرف ایک یہی ادغام مثلین صغیر نہیں ہوتا, بہت سارے اور ادغام بھی مثلین صغیر ہو سکتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی یہاں پر ابھی ہم اس کو اس لیے ادغام مثلین صغیر کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ دو سملر لیٹرز کے اندر ادغام ہو رہا ہے, اور پہلا میم ساکن ہے جبکہ دوسرا والا میم متحرک ہے. پھر اسی طرح سے اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ ہم اخفا شفوی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے نون ساکن کے اخفاظ میں آپ نے دیکھا کہ ہم یا تو مخرج کے کو ہٹ کر رہے ہیں, اور یا مخرج کے اتنا قریب جا رہے ہیں کہ آلموسٹ ٹچ ہے. یعنی صرف آپ نے وہاں پہ دباؤ نہیں ڈالا نا, آپ کی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ ہٹ کو فیل کر رہے ہوں گے, ہلکے ٹچ کو فیل کر رہے ہوں گے, مگر آپ نے وہاں پہ پریس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ بہت ڈسٹینٹ رہیں گے تو وہ ساؤنڈ کلیئر نہیں آئے گی. جیسے نون ساکن کے اخفا کی بھی بات ہم نے کی, اگر یوں آپ ڈسٹینٹ رکھیں گے اپنی ٹنگ کو تا کے مخرج سے تو وہ کلیئر ساؤنڈ نہیں آئے گی. تاکہ بہت کلوز جائیں, اتنا کہ وہ ہلکا چھو بھی رہا ہو لیکن دباؤ میں نہ ہو, پریشر میں نہ آئے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اخفا کے بارے میں ایکچولی اس چیز کو میں اس لیے ریپیٹ کری ہوں کیونکہ اس اخفا شفوی کے بارے میں بھی کچھ ڈفرنس آف اوپینین اسکالرز میں بھی پائے جاتے ہیں, اور اس کی ساؤنڈ کے اندر بھی آپ کو ڈفرینسز ملیں گے. تو اس میں بیسیکلی دو اسکولز آف تھاٹ ہیں. ایک تو کہتے ہیں کہ آپ اخفا شفوی کریں گے جب تو آپ پیپر گیپ کے ساتھ کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی لپس کے پیپر گیپ کے ساتھ کریں گے. اور دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پیپر گیپ کے ساتھ نہیں کرنا, بلکہ آپ نے لپس کو جوائن کرنا ہے, مگر اسے اس طرح سے دبانا نہیں ہے جیسے کہ آپ مین کے لیے دباتے ہیں. جیسے آپ بولتے ہیں مین ہو ما, تو آپ اچھا اس کو کلیئر کر رہے ہیں مین کو بالکل, لیکن جب آپ اخفا کرتے ہیں تو پھر آپ ایسا نہیں کرتے کہ آپ اسے بہت دبائیں, بلکہ آپ کیا کرتے ہیں کہ یعنی آپ چھوتے ہیں لپس کو, لپس آپ کے بند رہتے ہیں لیکن آپ اس کو یعنی اس کو پریشرائز نہیں کرتے. جیسے हुदन बादा, तो इसको आप दबा नहीं रहे बल्कि सिर्फ आपके लिप्स बंद हो रहे हैं। इसमें एक रीजन जो जिस तरह से हैं उसमें आप लोग इसमें लाइक ओपन हैं, आप किसी भी ओपिनियन को फॉलो कर सकते हैं अपनी रिसर्च बेस के ऊपर, लेकिन जिस तरह से हम जिस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करें हैं वो यही है कि आप लिप्स को बंद करके यानी विदाउट पेपर गैप लिप्स को ज्वाइन करके आप इख्फा शफवी करें। और उसमें रीजन ये है कि अगर आप अपने लिप्स को खुला रखते हैं, यानी अगर आप लिप्स को खुला रख रहे हैं पेपर गैप दे रहे हैं, तो ये साउंड इतनी वाजिया नहीं होगी कि ये मीम को टच करे, यानी लगेगा जैसे आप नून को छुपा रहे हैं। यानी अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो ये ज्यादा क्लोज होगी इख्फा नून के, क्योंकि नून के इख्फा में भी आप यही काम कर रहे होते हैं ना कि आप जो है वो अगर आप यूं करके कर रहे हैं तो वैसे लगेगा जैसे आप नून का ही इख्फा करें। तो मीम के इख्फा को क्लियर करने के लिए और डिस्टिंक्ट करने के लिए नून के इख्फा से आप जो पेपर गैप है वो इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं यानी लिप्स को ज्वाइन करते हैं मगर वहां पे दबाते नहीं है। ये जो इदगाम और इख्फा का डिफरेंस है ये इस टाइमिंग से भी, हम आगे जाए इंशाल्लाह अगर आज टाइमिंग से भी क्लियर हो जाता है, ठीक है, यानी जो आप इदगाम करे हैं उसकी टाइमिंग्स और जो आप इख्फा करे हैं उसकी टाइमिंग्स डिफरेंट होती है एक दूसरे से, उससे भी ये चीज क्लियर हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मिन हुम और मिन हुम, यानी इसके अंदर एक साउंड डिफरेंस भी है जो कि आपको फील हो जाता है, ठीक है, यानी अगर बा आ रहा है और अगर इदगाम करे हैं तो उसके अंदर एक साउंड डिफरेंस भी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड है, सिस्टर ने लिखा तरुमी हिम बी हिजारो, तो यानी आप पेपर गैप नहीं रख रहे बल्कि आप लिप्स को ज्वाइन करे हैं लेकिन दबा नहीं रहे, जैसे आप मीम के लिए थोड़ा प्रेस करते हैं उस तरह से, ठीक है। इसके अलावा मीम साकिन के बाद अगर कोई और हर्फ आए, यानी मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा अगर कोई और हर्फ आ जाता है तो वहां पे हम मीम साकिन को का इजहार करके पढ़ेंगे, यानी इजहार शफवी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इजहार शफवी करते हैं तो आप क्या करते हैं कि मीम साकिन को उसके मखरज और उसकी तमाम क्वालिटीज के साथ स्पेसिफिकली इजहार शफवी, मीम साकिन को उसके मखरज से बोलेंगे, उसकी तमाम क्वालिटीज को पूरा करेंगे मगर लंबा गुन्ना नहीं करेंगे, यानी गुन्ना को लेंथन किए बगैर उसको जाहिर करना, ये क्या होगा इजहारु शफवी। लाइक अईदीहिम वमा खल्फहुम, आप दोनों जगह के ऊपर इजहार शफवी करें, अईदीहिम वमा खल्फहुम, तो हम यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। अगर आप इसको यूं पढ़ते हैं अईदीहिम वमा, तो ये जो है ये बहुत दुरुस्त तरीका नहीं है, ठीक है, तो इससे अवॉइड करें कि आप ज्यादा देर ना रुकें, सिर्फ आपने इसे अच्छा हेड देना है, अभी हम अभी डिस्कस करेंगे कि हम गुन्ना करेंगे। हमने कहा था ना नून और मीम क्वालिटी है गुन्ना, सो हाउ कुड यू से लाइक आई मीन द मीम विदाउट गुन्ना, ये चीज गुन्ना करेंगे, लंबा गुन्ना नहीं करेंगे, जी टेंशन नहीं करेंगे उसको, आई दी हिम वमा खुम, जी इसको अभी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसके बारे में भी कुछ मिसकॉन्सेप्शन पाए जाते हैं, हम ठीक है। तो ये तीन अहकाम है मीम इसी टॉपिक के ऊपर जिसे हम क्या शफ हुई, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको, अभी भी ब्रेक हो रही है आवाज मेरी, ठीक है, मैं इधार शफ इदगाम शफ हुई, यानी अगर मीम साकिन के बाद मीम या बा के अलावा कोई और हर्फ आ जाए तो आप मीम को उसके मखरज और उसकी तमाम क्वालिटीज के साथ ज्यादा देर गुन्ना किए बगैर अदा करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी अईदीहिम वमा खल्फहुम, तो आप देखिए अईदीहिम वमा, आप ज्यादा नहीं रुक रहे यहां पर, और यहां पे गुन्ना है जिसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करने लगे जी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है गुन्ना के रैंक्स, लेवल्स ऑफ गुन्ना, मरातिबुल गुन्ना। एक चीज का आप हमेशा जहन में रखिए कि जैसे हमने सॉरी मखारिज के चैप्टर में भी ये चीज पढ़ी थी कि नून और मीम ये दो ऐसे हरूफ हैं जो अपने अपने मखरज से आने के अलावा या उसके साथ साथ खैशूम से भी आते हैं, ठीक है। नून का अपना एक मखरज है लेकिन इसकी साउंड तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि आप खैशूम को इन्वॉल्व नहीं करते। मीम साकिन का अपना एक मखरज है लेकिन उसकी साउंड तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि आप अल खैशूम को इन्वॉल्व नहीं करते। तो खैशूम जो है उसके इन्वॉल्वमेंट नून और मीम के अंदर कंपल्सरी है। नून और मीम इन दो हरूफ को आप कभी भी गुन्ना के बगैर नहीं बोल सकते। इवन अगर आप ना और माँ भी बोल रहे हैं ना तो आप गुन्ना के बगैर ना और माँ भी नहीं बोल सकते। जब आप ना कहेंगे तो आपका एक फिजिकल हिट है यानी टिप ऑफ टंग ऊपर गम्स के उभार के साथ लगेगी प्लस आपने नेजल साउंड को ऐड करना है तभी आपका ना मुकम्मल होगा। अगर आप नाक को बंद कर दें खैशूम को गुन्ना को बंद कर दें तो ये साउंड लगेगी डा डा जो कि उनकी साउंड नहीं है, ठीक है। तो खैशूम जो है वो कंपल्सरी एरिया है जो आपने इन्वॉल्व करना होता है नून और मीम में। तो नून और मीम कभी भी गुन्ना से खाली नहीं होते लेकिन उसके डिफरेंट लेवल्स हैं। कहीं आप ज्यादा देर गुन्ना करते हैं कहीं आप कम देर गुन्ना करते हैं। आज हम इंशाल्लाह इसी के ऊपर बात करेंगे। फोर रैंक्स हैं हमारे पास गुन्ना के। नंबर वन गुन्ना अकमल द हाइएस्ट रैंक ऑफ गुन्ना। नंबर टू गुन्ना कामिल सेकेंड नंबर पे इसका लेवल आता है। नंबर थ्री गुन्ना नाकिस। नंबर फोर गुन्ना अनकस, ठीक है। तो ये फोर लेवल्स हैं अकमल कामिल नाकिस अनकस, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले एक चीज आप अपने माइंड में रखें कि ये जितने भी लेवल्स हैं ना ये गुन्ना की क्वांटिटी से रिलेट नहीं करते बल्कि उसकी टाइमिंग से रिलेट करते हैं। यानी टाइमिंग से ये डिफरेंस आता है क्वांटिटी से नहीं आता। यानी ऐसा नहीं है कि अकमल में आपने ज्यादा नाक में आवाज लेके जानी है और अनकस में आपने कम नाक में आवाज लेके जानी है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये टाइम से कि कितना टाइम आप गुन्ना करेंगे ये उससे रिलेट करता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गुन्ना अकमल जो है वो हाइएस्ट लेवल है गुन्ना का। इसमें आप सबसे ज्यादा देर ठहरते हैं। हम इसको किसी भी काउंट से रिलेट नहीं कर सकते। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि आपने टू काउंट्स रुकना है या थ्री काउंट्स रुकना है या फोर काउंट्स रुकना है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ योर रीडिंग, ठीक है। आप स्पीड से इस चीज को एस्टैब्लिश करते हैं। अगर आप हदर रीडिंग कर रहे हैं फास्ट रीडिंग कर रहे हैं ऑफकोर्स आपका गुन्ना अकमल शॉर्ट हो जाएगा और गुन्ना कामिल उसके मुताबिक हो जाएगा। नाकस अनकस उतना ही रहता है, ठीक है। लेकिन अकमल और कामिल के अंदर डिफरेंस आने लग जाएगा। फिर इसी तरह से अगर आप स्लो रीडिंग करें तो ऑफकोर्स आपका गुन्ना बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप पढ़ते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू तो देखिए इन्ना का जो स्टे है वो जरा लॉन्ग जाएगा। लेकिन अगर आप फास्ट करते हैं तो इन्नल्लज़ीना आमनू तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या हुआ आप रुके तो है मगर वो शॉर्ट हो गया, सही। तो इसको हम टाइमिंग से डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आपने टू हरका है रुकना है या थ्री रुकना है या फोर रुकना है। ये सिर्फ एक दूसरे के कंपैरिजन में आ रहे होते हैं और आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो गुन्ना अकमल को हम देखते हैं ये सबसे लेंथन गुन्ना होता है जिसमें आप सबसे ज्यादा देर रुकते हैं और ये कहां कहां होता है। नून मुशद्ददा के ऊपर नंबर वन नून विद द तशदीद। नंबर टू मीम विद द तशदीद। नंबर थ्री इदगाम शफवी यानी इदगाम मिसलैन सगीर। नंबर फोर इदगाम बगुन्ना नून साकिन का जो इदगाम है बगुन्ना वो उसमें आपने अकमल गुन्ना करना होता है। यानी आपका जो स्टे है वो लॉन्गेस्ट होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी इन्नल्लज़ीना तो इन्ना के ऊपर आपने सबसे ज्यादा देर जो है वो रुकना है। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। नून मुशद्दद मीम मुशद्दद इदगाम इस्लाइन सगीर यानी मीम साकिन का इदगाम प्लस नून साकिन का इदगाम। लेकिन नून साकिन का इदगाम बगुन्ना होना चाहिए। दी गए गुन्ना के अंदर तो गुन्ना ही नहीं होगा ना। इसलिए वहां पे आप जैसे मेर रब्बिक अब ये भी इदगाम है मगर ये बिगैर गुन्ना है तो इसमें गुन्ना का रैंक नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये फोर ऐसी प्लेसेस हैं जहां पे आप हाईएस्ट टाइम देते हैं गुन्ना का, गुन्ना अकमल कर रहे हो। इसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है गुन्ना कामिल। गुन्ना कामिल ये भी लंबा गुन्ना होता है मगर गुन्ना अकमल से थोड़ा सा टाइम इसका शॉर्ट होता है, और ये उस वक्त ज्यादा प्रोमिनेंट आता है जब आगे पीछे ऐसे गुन्ना जा रहे हो, यानी पहले गुन्ना अकमल आ गया, फिर कामिल आ गया, फिर गुन्ना अकमल आ गया, तो उस वक्त ये डिफरेंस बहुत वाजे हो जाता है। सही, गुन्ना कामिल जो है वो होता है इख्फा शफवी के ऊपर, मीम साकिन के बाद बाजे तक, इख्फा हकीकी के ऊपर, यानी जो नून साकिन के इख्फाज हैं उनके ऊपर, प्लस इक्लाब इसके ऊपर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना इख्फा और इदगाम का डिफरेंस, कि आप कैसे डिस्टिंक्ट करें, जब आप दोनों में ही लिप्स को ज्वाइन करें हैं तो डिस्टिंक्ट कैसे करें। एक तो मैंने आपको बताया था हिट में स्लाइट डिफरेंस आ जाएगा, मीम का हिट स्ट्रांग होगा जब आप जाहिर करके पढ़ेंगे, जब आप इख्फा करके पढ़ेंगे तो वो हिट थोड़ा वीक हो जाएगा। दूसरी चीज, इस टाइमिंग से भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इख्फा की जो टाइमिंग है वो जरा कम होती है बनिस्बत इदगाम की टाइमिंग के। नंबर थ्री, गुन्ना नाकिस। गुन्ना नाकिस होता है इधारुल हलकी और इधारुल शफवी के ऊपर, और ये होता है फॉर तवस्सुत टाइम, मीडियम टाइम के लिए। मीडियम टाइम आप कह सकते हैं वन हरका से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसको आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वन हरका से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होता है ये। जैसे जैसे अभी आपको मैं इसकी धार शफवी की एग्जांपल देती थी ना, ऐदी हिब वमा खल्फहुम, तो आपने उसको वाजे करना है। बाज़ का स्टूडेंट्स इसको बहुत क्विक पढ़ते हैं तो वो गुन्ना का अच्छा टाइम पूरा नहीं करते, गुन्ना नाकस नहीं करते, बहुत क्विक हो जाते हैं, ऐदी हिम वमा, नहीं वो फिर आपका मीम क्लियर नहीं हुआ। ऐदी हिब वमा, यानी उसे मुकम्मल करें, हिब तसल्ली से उसको मुकम्मल करके आगे चले, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है कि आप उसे प्रोलॉन्ग करें हैं गुन्ना को, ये काम नहीं करना, लेकिन आपने उसे मुकम्मल करना है। ठीक है, यानी मीम को इत्सेल्फ आपने मुकम्मल करना है। जैसे बी एफ वाहिब वल्लाह, ठीक है, ये गुन्ना नाकिस है। गुन्ना नाकिस इजहार शफवी में और इजहारुल हलकी में, नून साकिन के इजहार में और मीम साकिन के इजहार में। ठीक है, और फिर उसके बाद लोएस्ट लेवल आपका आ जाता है गुन्ना अनकस। गुन्ना अनकस होता है मीम और नून मुतहर्रिक में। मीम और नून मुतहर्रिक में, जैसे आप अगर बोल रहे हैं माला, जो मा के अंदर आपका रैंक आ रहा है वो माला, यानी वो अनकस है। ठीक है, फिर इसी तरह से मूसा, तो मू वन हरका के लिए होता है, इसको आप हरका से डिस्क्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपने हरका बोलनी ना, वन हरका, मा नी मू ना नी नू, सो इट्स ओनली फॉर वन हरका। जो ये गुन्ना होता है अनकस, ये वन हरका के लिए होता है, जैसे मूसा, सो डोंट टेक द गुन्ना इन दी वाव। ठीक है, मू प्रोलॉन्ग नहीं करना उसे, मूसा मूसा या कौमी, लीमा लीमा। ठीक है, यानी मा मा, तो जो नी नी नी, या में जाते ही आपने गुन्ना जस्ट लाइक फिनिश इट। तो ये जो गुन्ना है ये वन हरका के लिए होता है। ठीक है, यही यही तक हम रखते हैं। अभी आप सवाल कर सकते हैं, स्टिल हैव फ्यू मिनट्स। इसमें एक दो चीजें जो मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक तो प्रैक्टिस बहुत करें, ठीक है, दूसरा इन टर्म्स को आपने जो यानी ये जो हमने टर्म्स पढ़ी ना गुन्ना की, इसको इदगाम से आपने डिफरेंट रखना है, क्योंकि इदगाम में भी आपको बताया हमने एक टर्म पढ़ी थी कामिल और नाकिस। तो मैंने बहुत दफा देखा है कि जब स्टूडेंट्स को ये वाला टॉपिक पढ़ाया जाता है तो वो इदगाम कामिल नाकिस में और गुन्ना कामिल और नाकिस के अंदर बहुत मिक्स करने लग जाते हैं। इदगाम कामिल और नाकिस डिफरेंट था। इदगाम कामिल कौन सा इदगाम था जिसमें पहला लेटर बिल्कुल भी बाकी नहीं रहता, और जो इदगाम नाकस था वो था 50-50%। ठीक है, तो एक तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, और गुन्ना कामिल और नाकस टाइम से आ रहा है, जी बिल्कुल, नाम बिल्कुल सिमिलर है तो उसमें ना इदगाम और गुन्ना इस चीज का डिफरेंट रखें। इदगाम कामिल की बात हो रही है, इट मीन्स की मर्जिंग पूरी है। गुन्ना कामिल की बात हो रही है, इसका मतलब है कि टाइमिंग जो है वो ज्यादा तो है मगर अकमल से कम है, ठीक है। इससे आपने इस चीज को डिस्टिंक्ट रखना है, इन दोनों चीजों को मिक्सअप नहीं होने देना। और दूसरा ये कि मैं आपको होमवर्क देती हूँ, इंशाल्लाह आप इसको होमवर्क को कीजिएगा कि आप कोशिश कीजिए फाइंड आउट करें कुछ एग्जाम्पल नून साकिन के इदगाम की, ठीक है। फिर नून साकिन के जितने रूल्स आपने पढ़े इदगाम की, इजहार हलकी की, फिर इकलाब की और इख्फा हकीकी की। इसी तरह से नीम साकिन की एग्जाम्पल्स फाइंड आउट कीजिए, इदगाम इस्लाइन सगीर की, इख्फा शफवी की और इजहार शफवी की, और फिर उनको रैंक कीजिए, ठीक है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इदगाम शफवी फाइंड आउट किया, अब आपने उसको रैंक करना है कि इदगाम शफवी में गुन्ना का कौन सा मरतबा आना चाहिए, क्या हमारे पास कामिल आएगा या अकमल आएगा या नाकिस आएगा या अनकस आएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा होमवर्क करना है और इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा सा हम एक दो वर्ड्स देख लेते हैं इसमें से, कुरान पाक में से। आई थिंक सूरतुल मुद्दस्सिर हमने शुरू की थी। सो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे आप देखिए फॉर एग्जाम्पल वर्ड अल मुद्दस्सिर इत्सफ में मीम बम आ रहा है, मदमूम आ रहा है, तो ये मीम मुतहर्रिक है, इसके अंदर हम कौन सा रैंक लेंगे गुना का, मीम मुतहर्रिक के अंदर अनकस, ठीक है, गुड। मीम मुतहर्रिक अनकस होगा सबसे लोएस्ट वाला, बिल्कुल थोड़ी देर करें ना तो अनकस पे आप देखिए तुम फ़ानज़िर। अब तुम के अंदर यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, जितने आप क्विक होंगे रूल्स के लिए उतने आप क्विक होंगे रैंक ऑफ गुन्ना के लिए। नहीं, इट्स नॉट अनकस हियर, तुम मीम साकिना, इजहारु शफ़वी जी, इजहार के अंदर कौन सा होता है, इजहार के अंदर नाकस होगा, सही, इजहार के अंदर नाकस, इसलिए हम ठहर नहीं रहे, कामिल अकमल में रुकते हैं, ये याद रखिए, कामिल और अकमल में आपने रुकना होता है। आप यहाँ पे जल्दी जा रहे हैं, खुम फा अंजीर, अब यहाँ पे आप रुक रहे हैं, व्हाट इज इट, कौन सा रूल है और फिर कौन सा रैंक है, ठीक है, इख्फा हकीकी और रैंक कामिल, वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको करना है, जितना आप क्विक होंगे रूल्स को जैसे ही आप देखें वन ग्लांस में आपको पता चलना चाहिए कौन सा रूल है और कौन सा रैंक ऑफ होना है, क्योंकि जब हम रीडिंग करें उतने फिर हमारे पास सोचने का टाइम तो नहीं होता ना, तो इंशाल्लाह जितनी आपकी प्रैक्टिस और ड्रिल होगी फिर उतना आपका इसके ऊपर ग्रिप भी आएगी। तो हमारा मेन पर्पज तो यही है ना कि हम इन सब चीजों को अपनी रीडिंग के अंदर लेकर आए, तो इवन रीडिंग करते हुए भी आप ना एक आपकी जो परसेप्शन है वो इस तरफ जारी हो के कौन कौन से रूल्स हैं और कितना कितना रैंक है, तो तजवीद की प्रैक्टिस में ये सब चीजें आप जब शामिल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अंदर एक क्विकनेस आएगी इन सब रूल्स को यानी परसीव करने में और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डिफरेंट नए रूल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.